12 अक्टूबर दिन बुधवार दिन भर मैं हूं रेहान फदर। पेरिस हमलों के मुख्य अभियुक्त सलाह अब्देसलाम के वकीलों ने उनसे पल्ला झाड़ा।
On crée un mutisme chez Salah Abdeslam, mais les vraies victimes dans tout ça, c'est en fin de compte les victimes, les vraies victimes des attentats de Paris.
ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का दुनिया में 97वां स्थान और दुनिया जहान में चर्चा होगी सऊदी अरब और यमन के बीच चल रहे संघर्ष की।
देखिए जो सऊदी अरब जो वहाँ पर रोल प्ले कर रहा है और उसके जो नेतृत्व में जो कोलिशन है हूती रेबल्स के अगेंस्ट लड़ रही है उसको अमेरिका और ब्रिटेन का काफी सपोर्ट प्राप्त है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। पिछले साल नवंबर में पेरिस में हुए हमले के मुख्य संदिग्ध के दो वकीलों का कहना है कि वो अब उसका बचाव नहीं करेंगे। फ्रैंक बर्टन और स्वेन मैरी ने फ्रांसीसी टीवी को बताया है कि उनका मुवक्किल सलाह अब्देसलाम अपने खामोश रहने के अधिकार का पालन कर रहा है। थाईलैंड के राजा भूमिबोल अदुलयादेज की खराब सेहत की रिपोर्टों के मद्देनजर थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चनोचा अपना कामकाज छोड़कर बैंकॉक लौट आए हैं। राजकुमार भी अपने पिता से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं। उनके अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। उन्हीं में से एक ने कहा, हम चाहते हैं कि राजा अच्छा काम करते रहें और हमें उम्मीद है कि वो जल्द बेहतर हो जाएंगे। भारत प्रशासित कश्मीर के पंपोर में चरमपंथियों और भारतीय सेना के बीच 60 घंटे चली मुठभेड़ समाप्त हो गई है। सेना के मुताबिक दोनों चरमपंथी मारे गए हैं। 7 मंजिला इमारत में घुसे चरमपंथी रह रहकर गोलीबारी कर रहे थे। और अभी अभी मिल रही एक रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया के एलेपो में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके पर हुई बमबारी में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों के उत्तरी इराक में विस्फोटकों से भरे ड्रोन से हमला करने की रिपोर्ट सामने आई है। कुर्द अधिकारियों के मुताबिक हमले में उनके 2 सैनिक मारे गए हैं और 2 फ्रांसीसी सैनिक घायल हुए हैं। इस ड्रोन के जमीन पर क्रैश करने के बाद सैन्य बल उसके पास आ गए थे। जब उन्होंने उसे छुआ तो धमाका हो गया। इस्लामिक स्टेट के लड़ाके खुफिया जानकारियां जुटाने के लिए छोटे छोटे विमानों का इस्तेमाल करते रहे हैं। संवाददाताओं के मुताबिक ये पहली बार है जब उन्होंने इस तरह ड्रोन का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया है। नाइजीरिया के माइडुगुरी में एक टैक्सी में हुए बम धमाके में कम 7 लोग मारे गए हैं और 15 अन्य घायल हुए हैं। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि वाहन में बम लगाया गया था या आत्मघाती हमलावर ने धमाका किया। यह इलाका चरमपंथी समूह बोको हराम की गतिविधियों से प्रभावित है। नाइजीरिया और गठबंधन सेनाओं ने बोको हराम के कब्जे से बड़ा इलाका छुड़ा लिया है, लेकिन ये समूह अब भी रह रहकर यहाँ हमले कर रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि ओबामा प्रशासन के साथ वार्ता करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अमरीका पहले से तय कर रहा है कि क्या करना है और फिर चाहता है कि रूस उसे अंजाम दे। उन्होंने कहा कि यह आदेश देने जैसा है। उन्होंने कहा कि अगर अमरीका सामान्य रिश्ते चाहता है तो उन्हें सहयोगियों की तरह वर्ताव करना शुरू करना होगा। इंडोनेशिया की संसद ने बाल यौन अपराधियों के लिए कठोर सजा के प्रावधानों को मंजूरी दे दी है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। शुरुआत करते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय विषय से। पिछले साल नवंबर में पेरिस में हुए हमलों के मुख्य अभियुक्त सलाह अब्देसलाम के वकीलों का कहना है कि अब आगे वो अपने मुवक्किल का केस नहीं लड़ सकते। उनका कहना है कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब्देसलाम शुरू से ही कुछ भी न बोलने के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुना रहे हैं रोहित जोशी।
पेरिस में हुए हमलों के मुख्य अभियुक्त सलाह अब्देसलाम के वकील फ्रैंक बर्टन और स्वेन मैरी ने एक फ्रांसीसी टीवी चैनल BFM टीवी से बात करते हुए कहा है कि वे अब आगे अपने मुवक्किल का केस नहीं लड़ सकते। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि उनके मुवक्किल आखिरकार बात करने को तैयार हो जाएंगे, लेकिन अब उन्हें यह बिल्कुल साफ हो गया है कि वह मानसिक रूप से काफी परेशान है और अपने चुप रहने के अधिकार को ही बरकरार रखेंगे। अब्द इस्लाम के वकील स्वैन मैरी ने कहा है कि पेरिस हमलों में मारे गए लोगों की जिन्हें परवाह है उन्होंने यह समझने का मौका खो दिया है कि असल में क्या हुआ था। आप सलाह अब्द इस्लाम को चुप रहने दीजिए, लेकिन इस सब के बाद आखिरकार असली पीड़ित लोग ही पेरिस हमलों के पीड़ित हैं। उन लोगों को सच जानने और समझ के परे की चीजों को समझने की कोशिश करने का हक है। ये थे अब्द इस्लाम के वकील स्वैन मैरी के शब्द। BFM टीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों वकीलों ने अपने मुवक्किल को यह बात 6 अक्टूबर को बता दी थी कि वे आगे उनका केस नहीं लड़ेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब्द सलाम अभी किसी दूसरे वकील की मदद नहीं लेना चाहते हैं। हालांकि जांच के जारी रहने के दौरान किसी कानूनी प्रतिनिधि की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अब्द सलाम को आगे ट्रायल के दौरान इसकी जरूरत पड़ेगी। अब्द सलाम को जेल में इंफ्रारेड वीडियो कैमरे के जरिए 2400 घंटे की निगरानी में रखा गया है। उनके वकील फ्रैंक बर्टन ने BFM टीवी से बात करते हुए कहा है कि वे खुद को 24 घंटे के सर्विलांस में रखे जाने को लेकर सहमत थे, लेकिन मई में बर्टन ने कहा था कि इस तरह की निगरानी से वह परेशान दिखाई दिए थे। बर्टन ने टीवी चैनल से कहा है कि अब्द इस्लाम को वीडियो निगरानी में रखना एक राजनीतिक निर्णय था। मैंने सलाह अब्द इस्लाम को 24 घंटों इंफ्रारेड कैमरे की मदद से निगरानी किए जाने के चलते महीने महीने में बदलते देखा है। इस तरह का बर्ताव एक आदमी को पागल बना देता है और यह सब एक राजनीतिक निर्णय के चलते बने हालात हैं। ये थे वकील फ्रैंक बर्टन के शब्द। पिछले साल नवंबर में हुए पेरिस हमलों में 130 लोग मारे गए थे। इस्लामिक स्टेट ने पेरिस में अलग अलग जगह हुए इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी। यह माना जाता है कि अब्द इस्लाम की पेरिस हमले की योजना बनाने और हमलावरों को लाने में मुख्य भूमिका थी, लेकिन जांचकर्ता उसकी ठीक ठीक भूमिका के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। सलाह अब्द इस्लाम को इस साल मार्च में ब्रसल्स में गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद अप्रैल में उन्हें फ्रांस ले जाने के बाद से उन्होंने चुप्पी साधे रखी है।
पेरिस हमलों के अभियुक्त के वकीलों ने उनका साथ छोड़ा।
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
और अब कुछ खबरें भारत से। भारत प्रशासित कश्मीर की एक सरकारी इमारत में छिपे चरमपंथियों के विरुद्ध सुरक्षाकर्मियों के लंबे अभियान के बाद 2 चरमपंथियों को मारने का दावा किया गया है। इस ऑपरेशन में 7 मंजिल की हॉस्टल इमारत नष्ट हो गई है। इस बीच आज शिया समुदाय के आशूरा जुलूस पर प्रतिबंध के कारण शिया आजादारों ने प्रदर्शन किया। घाटी में पहले से ही 3 महीने से चल रहे अलगाववादी आंदोलन के विरुद्ध सरकारी ऑपरेशन जारी है। अब तक 8,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट या EDI के 7 मंजिलों वाले हॉस्टल में छिपे चरमपंथियों के विरुद्ध 3 दिन से जारी ऑपरेशन आज दोपहर को समाप्त हो गया। 60 घंटों तक इस इमारत पर फोर्सेज ने रॉकेट और मार्टर गोले दागे, जिसके बाद सेना बिल्डिंग के अंदर घुसने में कामयाब हो गई। सेना ने ऑपरेशन में 2 चरमपंथियों के मारे जाने का दावा करते हुए कहा है कि इनसे 2 राइफल्स और गोली बारूद बरामद हुआ है। ताहम इनकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई। सेना की विक्टर फोर्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग अशोक निर्मल ने बताया कि चरमपंथियों ने बहुत बड़ी इमारत में शरण ली थी, जिसके कारण ये अब तक का सबसे कठिन ऑपरेशन था।
ऑपरेशन ये वाला बहुत टीडियस ऑपरेशन होता है। टीडियस मतलब कि इसके अंदर में टाइम लगता है, क्योंकि 60 कमरे थे 6 फ्लोर्स के ऊपर में। हर एक कमरे के अंदर अटैच बाथरूम है, दैट अमाउंट्स टू 120 कमरे, और हर एक कमरे की ड्रिल बराबर है। इसी कारण से इसके अंदर में सारा टाइम लगता है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल, इट टेक्स इट्स ओन टाइम टू डू।
कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल सैयद जावेद मुज्तबा गिलानी ने इस एनकाउंटर के बारे में सिक्योरिटी लैब्स की खबरों का खंडन किया।
So our people were alert, and probably it's also because of the fact that people were alert on the highway that they couldn't cause any damage on the highway and they had to take shelter in this building.
Mr. गिलानी का कहना है कि सेना और फोर्सेज की सतर्कता की वजह से ही चरमपंथियों को शहर के भीतर जाने की बजाय इमारत में शरण लेनी पड़ी। उन्होंने बताया कि पुलिस को खुफिया सूचना मिली है कि चरमपंथी श्रीनगर में किसी बड़ी हिंसक घटना की नीति बना रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में 250 चरमपंथी सक्रिय हैं, जो 29 सितंबर को पाकिस्तानी कश्मीर में भारतीय सेना की कथित सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की ताक में हैं। सेना ने आज दावा किया कि उत्तरी कश्मीर के टंगडार सेक्टर में LOC पर चरमपंथियों द्वारा घुसपैठ का प्रयास विफल किया गया, जिसके बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। गौरतलब है कि EDI श्रीनगर से दक्षिण की तरफ सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर केसर के खेतों के बीच स्थित है। इसी वर्ष फरवरी में भी यहां चरमपंथियों ने हाईवे पर अर्धसैनिक CRPF पर हमला करके इसी इमारत में शरण ली थी। 48 घंटों के अभियान के दौरान 3 पैरा कमांडोज और 2 CRPF कर्मचारी मारे गए थे। इस बीच घाटी में आज शिया समुदाय ने प्रशासन की तरफ से आशुरा के धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध के विरुद्ध प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करके जुलूस निकाले, जिसके बाद कई शिया आजादारों को गिरफ्तार किया गया।
अननेसेसरी जो रिस्ट्रिक्शन अब इम्पोज की गई है हमारे इस जुलूस पे, इसको हम रेजिस्ट करेंगे, इसीलिए हम आए हैं टू रजिस्टर आवर प्रोटेस्ट।
कश्मीर में शियों और सुन्नियों के धार्मिक जुलूसों पर 26 वर्ष से प्रतिबंध है। सरकार का कहना है कि इन जुलूसों का अलगाववादी राजनीतिक शोषण करते हैं, लेकिन धार्मिक संस्थानों का कहना है कि ये प्रतिबंध दरअसल भारतीय संविधान का उल्लंघन है। गौरतलब है घाटी में अलगाववादी आंदोलन का चौथा महीना चल रहा है। बैंक, शिक्षक संस्थान, पेट्रोल पंप और व्यापारी गतिविधियां ठप हैं। प्रदर्शनों का जोर तोड़ने के लिए घाटी में गिरफ्तारी अभियान जारी है, जिसके तहत अब तक 8,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार का कहना है कि सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए हिंसा भड़काते हैं। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
भारत के सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे पर राजनीति जारी है, जहां रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सर्जिकल स्ट्राइक्स पर सेना को श्रेय दिया, लेकिन कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का फैसला लेने के लिए सरकार को बधाई दी जानी चाहिए। कांग्रेस ने इसे तुच्छ राजनीति बताया है। विनीत खरे की रिपोर्ट।
भारत और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को बांटने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर सर्जिकल स्ट्राइक्स के भारतीय दावे को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच वाकयुद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मनोहर पर्रिकर आज मुंबई में थे और अपनी टिप्पणियों में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का जिक्र किया।
वी डोंट टेक क्रेडिट फॉर सर्जिकल स्ट्राइक्स, बट आई थिंक एवरीवन शुड रियलाइज दैट इट इज गवर्नमेंट।
पर्रिकर कह रहे थे, हम सर्जिकल स्ट्राइक्स का श्रेय नहीं ले रहे हैं, लेकिन लोगों को महसूस होना चाहिए कि ये सरकार है जो फैसला लेती है, और निडरतापूर्वक फैसला लेने के लिए सरकार की सराहना होनी चाहिए। ये थे मनोहर पर्रिकर। 29 सितंबर को भारतीय सेना की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक्स का दावा किया गया था, लेकिन इस ऑपरेशन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। पाकिस्तान ने भारतीय दावे को रद्द किया और कहा कि LOC की झड़पों में, जिसमें उसके 2 सैनिक मारे गए, उन्हें भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक्स बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस ने जहां भारतीय सेना की प्रशंसा की है, उन्होंने पाकिस्तान के दावे को रद्द करने के लिए सरकार से सबूत पेश करने को कहा है। मनोहर पर्रिकर ने आज फिर भारतीय सेना की तारीफ की, लेकिन कहा कि फैसले लेने के लिए सरकार की प्रशंसा होनी चाहिए।
मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर कुछ गलती होती तो उसका पूरा जो कुछ आना था वो इसी सरकार के सर पे आता था। तो suffered losses, I think they are the one who should also reap profit out of certain decisions, not out of the strike.
कांग्रेस का कहना है कि जब वो सत्ता में थी तब भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, लेकिन पार्टी ने कभी उस पर राजनीति नहीं की। आज फिर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया।
रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर को फौरी तौर से हमारे सैनिकों पर भी, उनकी कुर्बानी पर भी ऐसी तुच्छ राजनीति करने के लिए और सैनिकों के बलिदान को राजनीतिक आधार पर बांटने के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
रिपोर्टों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों से सर्जिकल स्ट्राइक्स पर बयानों में संयम बरतने को कहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक्स पर मोदी के फैसले की तारीफ करते हुए कई राजनीतिक बैनर्स नजर आए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि पार्टियों की नज़र उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर होगी। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत को 118 देशों की सूची में 97वें स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 39% बच्चे अविकसित हैं, जबकि आबादी का 15.2% हिस्सा कुपोषण का शिकार है। मैंने BBC संवाददाता सलमान रावी से पूछा कि इस रिपोर्ट में क्या बातें सामने निकल कर आई हैं।
देखिए, इस पूरी जो रिपोर्ट है, जो इंडेक्स है, उसमें कुल 118 देश हैं और उनमें जो एशियाई देश हैं उनकी हालत काफ़ी ख़राब नज़र आती है। 118 में 97वां जो स्थान है वो भारत का है, और कम से कम एक मामला ऐसा है जिसमें भारत ये कह सकता है कि उसने पाकिस्तान को पछाड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान का जहां तक सवाल है तो 107वें स्थान पर है पाकिस्तान जहां तक भूख का सवाल है। और खास तौर पर एक चीज इसमें और सिग्निफिकेंट है वो यह है कि बांग्लादेश और नेपाल भारत से बेहतर स्थिति में है जहां तक के भूख का या कुपोषण का सवाल है।
अच्छा सलमान, ये बताइए ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या? बहुत से हमारे श्रोता नहीं जानते होंगे कि है क्या चीज।
देखिए बहुत आंकड़ों वाली चीज है ये। विभिन्न देशों में जो खाद्य सामग्री की उपलब्धि है और लोगों को अनाज मिल पाता है कि नहीं, पौष्टिक उनका आहार है कि नहीं, इसका जो है एक सूचकांक हर साल जो है वो जारी किया जाता है। और इस इंडेक्स के जरिए पूरी दुनिया भर में भूख के खिलाफ जो अभियान चल रहा है या उसकी जो उपलब्धियां हैं या खामियां हैं उसको दर्शाया जाता है। और ये जो सर्वेक्षण है, जो इंडेक्स ये जो बनता है, इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। सबसे पहले वो एक जर्मन स्वयंसेवी संस्थान है जिसने इसको शुरू किया था, लेकिन उसके बाद ये US बेस्ड है, यानी अमेरिका में ये बेस्ड है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसके माध्यम से ये आंकड़े जारी किए जाते हैं। लेकिन इस बार जो ये इंडेक्स जारी हुआ है उसकी खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र का जो विजन है 2030 का, उसको जोड़ा गया है इससे, और उस विजन में ये कहा गया है कि लक्ष्य रखा गया है जीरो हंगर पूरे विश्व के लिए। तो ये तो हुई बात ग्लोबल हंगर इंडेक्स की।
लेकिन नापते कैसे हैं इसे?
जी, इसके नापने के भी बड़े मजेदार तरीके हैं जिससे नापा जाता है। ग्लोबल इंडेक्स स्कोर ज्यादा होने का मतलब है कि उस देश में भूख की समस्या बढ़ रही है। उसी तरह जैसे किसी देश का अगर स्कोर कम है तो इसका मतलब है कि वहां पर हालात बेहतर है। लेकिन इसका जो पैमाना है वो क्या है? इसके चार जो है मेजर पैमाने हैं। एक तो अल्प पोषण, दूसरे चाइल्ड वेस्टिंग, यानी ये भी कुपोषण से ही जुड़ा हुआ है, और बच्चों के विकास में रोग, यानी स्टंट, आप देखते होंगे बौने पैदा होते हैं, बच्चे ग्रोथ नहीं होती है, वो एक है, और बाल मृत्यु दर। तो ये जो चार मुख्य पैमाने हैं उसको ध्यान में रखकर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है।
ये थे PBC संवाददाता सलमान रवि।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड, यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। मध्यपूर्व में सीरिया का संकट अभी सिर उठाए घूम ही रहा है कि सऊदी अरब और यमन की लड़ाई ने भी जोर पकड़ लिया है। हूथी विद्रोहियों को रोकने के नाम पर सऊदी अरब और सहयोगी देशों के गठबंधन का हमलों का निशाना आम लोग बन रहे हैं। सऊदी अरब और यमन की लड़ाई में कितनी भूमिका इतिहास की है और कितनी पश्चिमी देशों की, दुनिया जहान में निखिल रंजन ने इस बार यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान।
छह हजार 80 में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ और उसमें प्रॉफिट मोहम्मद के सेकंड ग्रैंडसन इमाम हुसैन, उनको शहीद किया गया। करबला में एक नदी है यूफ्रेटिस, उसके बैंक्स पे, क्योंकि हुसैन के ऊपर प्रेशर ये था, यजीद जो कि एम्परर था डमास्कस में, हुसैन क्योंकि प्रॉफिट की फैमिली के हैं, वो अगर मेरे रूल को एंडोर्स कर दें तो मुझे लेजिटिमेसी मिल जाएगी। हुसैन ने मना कर दिया। उनका मकसद ये था कि मैं अपने परिवार को, अपनी जान को सैक्रिफाइस कर दूंगा, लेकिन मैं गलत कदम नहीं उठाऊंगा। हुसैन के बाद फिर सिलसिला हुसैन के बेटे जैनुल आबदीन इमाम हुए, फिर उनके बेटे हुए, तो वो एक झगड़ा तब से चला रहा है।
अरब जगत के जानकार सईद नकवी सऊदी अरब और यमन की लड़ाई को इतिहास के उस दौर से जोड़ते हैं जब ना तो हुथी विद्रोही थे, ना अमरीका, और ना वो हथियार जो इस जंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। वहाबियों का सऊदी अरब और शियाओं के करीब समझे जाने वालों के यमन की दुश्मनी के कई सिरे हैं। कोई ईरान से जा मिलता है तो कोई इसराइल से, कोई फलस्तीन से तो कोई सीरिया से, और वक्त के हिसाब से इनकी पकड़ कभी ढीली तो कभी कसती रहती है।
देखिए, ईरान, सीरिया और ये हिजबुल्ला, ये सब जो हैं ये मदद कर रहे थे फलस्तीनियों की। सऊदी अरेबिया ने इसको शिया आर्क कह दिया, लेकिन ईरान और हिजबुल्ला शिया ठहरे। असद की सरकार की कुछ फौजी एलिमेंट अलवी हैं, लिहाजा वो भी उतने ही शिया हैं जितने की जैदी यमन के शिया हैं। यानी ये 100% वो शिया नहीं है जो कि हिजबुल्ला और ईरान वाले हैं, लेकिन ये सब मदद किसकी कर रहे हैं? ये मदद कर रहे हैं हमास की। हमास में एक भी शिया नहीं है।
इन सब के साथ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या फिर आर्थिक वजहों से घुमा फिराकर इस लड़ाई में बारूद उड़ेलते रहे हैं। अरब जगत के इन दो देशों में आखिर क्या विवाद है जो इतने सालों के बाद भी ठंडा नहीं हो रहा? लंदन के किंग्स कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाने वाले प्रोफेसर हर्ष विपंत,
देखिए जो सऊदी अरब जो वहाँ पर रोल प्ले कर रहा है और उसके जो नेतृत्व में जो कोलिशन है जो हुथी रेबल्स के अगेंस्ट लड़ रही है, उसको अमेरिका और ब्रिटेन का काफी सपोर्ट प्राप्त है। और सपोर्ट ही नहीं, उसमें जो सऊदी अरब जो वेपन्स यूज कर रहा है वो भी वेस्ट सप्लाइड है। तो इसीलिए मुझे लगता है जो जिस तरह का रुख वहाँ की कॉन्फ्लिक्ट ने लिया है और जो कुछ घटनाएं पिछले समय से हो रही हैं जिसमें कि सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो रही हैं, उसको देखते हुए माहौल बन रहा है जिसमें अमेरिका अपने आप को भी एक गिल्टी पार्टी के रूप में पा रहा है। और इसीलिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अमेरिका और ब्रिटेन के जो सहयोगी देश हैं वो ये बात को बार बार कह रहे हैं, इन देशों को अपना जो सपोर्ट है सऊदी अरब के लिए वो रिव्यू करना चाहिए।
इस्लाम के दो प्रमुख धड़ों का विवाद तो दुनिया के दूसरे देशों में भी है और बहुत लंबे समय से, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब की जो स्थिति है वो पहले नहीं थी। तेल की गिरती कीमत, अमरीका की घटती दिलचस्पी, दुनिया के ताकतवर देशों के साथ ईरान का परमाणु करार और सीरिया की जंग का अनिश्चित भविष्य, सऊदी अरब की घबराहट के इस वक्त कई कारण मौजूद हैं। सईद नकवी,
सऊदी अरेबिया इस वक्त नरगे में है। अमेरिकन धीरे धीरे पिवट टू एशिया में, वो पैसिफिक जा रहे हैं, उनका फोकस चीन पे है और ये बिल्कुल यतीम हुए जा रहे हैं सऊदी, और उनको फंस गए हैं सीरिया में। उसी से बचने के लिए कि एक विक्ट्री मिल जाएगी, ये कूद पड़े यमन में।
सरकार और विद्रोहियों के रूप में दो धड़ों में बटा यमन संसाधनों के मामले में भले ही कमजोर हो, लेकिन कुछ कर गुजरने का उनका जज्बा मजबूत है और वो पारंपरिक रूप से लड़ाके हैं। उनके सामने सऊदी अरब के अमीर हैं जो खुद तो हथियार उठाते नहीं, इसलिए भाड़े के सैनिकों और हवाई हमलों से उनका मुकाबला कर रहे हैं।
इस वक्त यमन में कई हजार फौजें लैटिन अमेरिका की, कोलंबिया, पेरू, यहाँ के गरीब लोगों को मर्सनरी कंपनीज ब्लैक वाटर जैसी लेके गई हैं यमन में सऊदी के लिए लड़ने के लिए, क्योंकि सऊदी खुद मैदान में उतर नहीं सकता, ना कभी उतरा है। यमन के लोग बहुत पुराने जंगी हैं, जैसे कि कोई अफगानिस्तान से जंग जीत के ना गया, वैसे ही कोई यमन से जंग जीत के ना निकला, वहाँ ये फंसे हुए हैं। अब ये जिस तरह से ये गिर गए हैं, यानी बर्बाद किए दे रहे हैं मुल्क को, लेकिन वहाँ के लोग शहादत पे तुले हैं कि हम लड़ेंगे, हम अपनी जान दे देंगे।
यमन में चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट और अल कायदा के पांव भी मजबूती से जमे हैं। वास्तव में यहीं के अल कायदा गुट को सबसे खतरनाक माना जाता है। अमेरिका इनके ऊपर ड्रोन हमले कर ये दिखाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के लिए काम कर रहा है। पिछले दिनों उसे इसका खामियाजा उठाने की नौबत तब आ गई जब गश्त पर निकला उसका एक युद्धपोत विद्रोहियों के इलाके से दागे एक मिसाइल के निशाने पर आ गया। गनीमत इतनी रही कि कुछ नौसैनिकों को ही नुकसान पहुंचा और पोत बच गया। इसके बाद यमन में एक अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में बम हमला हुआ और 140 से ज्यादा आम लोगों की मौत हो गई। इस हमले के लिए सऊदी अरब की ओर उंगली उठ रही है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर बवाल मचा है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिस युद्ध में बड़े पैमाने पर आम लोगों की जान जा रही हो, उसमें अमरीका और ब्रिटेन जैसे देश किसी एक पक्ष के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। जानकार इसके पीछे कुछ रणनीतिक और भौगोलिक कारणों के नाम गिनाते हैं। हर्ष विपंत,
यमन का जो लोकेशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन के आसपास शिपिंग लेन्स है वहाँ पर, जिससे कि जो ऑयल और गैस का ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है, और वहाँ पर वेस्ट की मिलिट्री प्रेजेंस काफी ज्यादा है। तो उसको देखते हुए पहले जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी तो अमरीका को ये लग रहा था कि इस तरह से एस्केलेशन नहीं होगा, और सऊदी अरब ने भी काफी दबाव डाला था कि ये जो यमन है ये अगर बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होगी तो ये एक फेल स्टेट बन जाएगा, और इसलिए जो वहाँ के जो भूतपूर्व प्रेसिडेंट थे यमन के वो भाग के सऊदी अरब में चले गए थे। तो उसके चलते जो अलायंस के तौर पर जो रिलेशनशिप था अमेरिका का वो और ब्रिटेन का सऊदी अरब के साथ उसको निभा रहे हैं दोनों देश। दोनों को ये लगा कि थोड़ा समर्थन अगर वो सऊदी अरब और उस कोएलिशन को देंगे तो हो सकता है जल्दी वहां पर ग्राउंड सिचुएशन है वो ठीक हो जाए, लेकिन उसका उल्टा ही हो गया है। पिछले डेढ़ साल में जिस तरह से एयर वॉर एस्केलेट हुई है और सऊदी अरब ने जिस तरह का एटीट्यूड लिया है, समस्या विकट बनती जा रही है। उसका एक कारण यह है कि एक तरह से यमन में प्रॉक्सी वॉर चल रहा है।
दुनिया में युद्ध चाहे जहां हो, हथियार पश्चिमी देश और अमेरिका के बिकते हैं। हर युद्ध के साथ कुछ देशों की आर्थिक और सामरिक मजबूती बढ़ती गई है। सीरिया से लेकर यमन तक के विवाद में हथियारों के सौदागर देशों की भूमिका पर भी सवाल हैं। सईद नकवी।
अमेरिका की इकॉनमी बिल्डअप हुई पहली जंग के बाद, फिर बिल्ड हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो जंग और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में जब रिश्ता है तो वो रिश्ता कायम करने के लिए कुछ ना कुछ जंगें जारी रखी जाएंगी। ये है उसूल। इस उसूल के खिलाफ दुनिया की जनता लड़ रही है।
संयुक्त राष्ट्र कूटनीति नहीं दिखा रहा। अमेरिका ब्रिटेन हथियार बेचने में जुटे हैं और ईरान मौके से फायदा उठाने की कोशिश में है। जिन देशों में शिया सुन्नी दोनों समुदाय मौजूद हैं, वो इस लड़ाई में किसी के साथ खड़े नहीं होना चाहते। यमन मध्य पूर्व में छोटा ही सही, लेकिन दूसरा सीरिया बन रहा है। निखिल रंजन, BBC दिल्ली।
कार्यक्रम के शुरू में कहा गया 6080 सईद नकवी का तात्पर्य यहां 680 ईस्वी से था। उम्मीद है आप इस गलती को नजरअंदाज करेंगे और देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है रजत चान्ना के साथ।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं रजत चान्ना। सबसे पहले बात क्रिकेट की। भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन ICC टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में फिर शीर्ष पर पहुंच गए हैं। अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर टेस्ट में 140 रन देकर 13 विकेट चटकाए। अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया और उन्होंने 3 मैचों में 27 विकेट लिए हैं। इंदौर में आखिरी टेस्ट से पहले अश्विन रैंकिंग में तीसरे स्थान पर थे, लेकिन उन्होंने तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और डेल स्टेन को पछाड़कर पहला स्थान हासिल कर लिया है। वो हरफन मोला की सूची में भी शीर्ष पर हैं। वहीं टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारत के मध्य क्रम के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे करियर के सर्वशेष 6 रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। चेतेश्वर पुजारा 1 पायदान चढ़कर 14वें और कप्तान विराट कोहली 4 पायदान चढ़कर 16वें स्थान पर हैं। न्यूजीलैंड के लिए सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल 10 पायदान चढ़कर 58वें स्थान पर पहुंच गए, जबकि जिमी निशाम 12वें पायदान की छलांग लगाकर 70वें स्थान पर है। हरफन मोला में भारत के रविंद्र जडेजा करियर की सर्वशेष 3 रैंकिंग पर है। और वैलेंसिया में 24 से 30 अक्टूबर तक होने वाले 4 देशों के अंतर्राष्ट्रीय जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में हरजीत सिंह भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। गोलकीपर विकास दहिया और सूरज करकेरा गोलकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे। डिफेंस की कमान वरुण कुमार, गुरिंदर सिंह, हरमनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह और आनंद लाखड़ा के जिम्मे होगी। मिडफील्ड में कप्तान हरजीत, नीलकांत शर्मा, संता सिंह, सुमित और शमशेर सिंह होंगे, जबकि फॉरवर्ड पंक्ति में अरमान कुरेशी, मनप्रीत, गुरजन सिंह, परविंदर सिंह, अजय यादव, सिमरनजीत सिंह और अजीत कुमार पांडे पर दारोमदार रहेगा। भारत पहले मैच में 24 अक्टूबर को जर्मनी से खेलेगा। टूर्नामेंट में मेजबान स्पेन और बेल्जियम भी खेल रहे हैं। वहीं फुटबॉल में भारतीय टीम ब्रिक्स अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट में चीन की दीवार नहीं लांग सकी। मेजबान टीम को चीन के हाथों 0-1 से शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम हार की हैट्रिक के साथ ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। टूर्नामेंट में बने रहने के लिए भारत को हर हाल में ये मैच जीतना था, लेकिन वो मिले मौके का फायदा नहीं उठा सकी। चीन के लिए मैच का एकमात्र गोल इंजरी टाइम में हुआंग कोंग ने कर टीम को पहली जीत दिलाई। उसने एक मैच हारा जबकि एक ड्रॉ रहा है। अब उसके 4 अंक हो गए हैं। भारत तालिका में सबसे नीचे है। भारतीय टीम को अपना आखिरी लीग मुकाबला कल ब्राजील के खिलाफ खेलना है।
अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
पिछले साल नवंबर में पेरिस में हुए हमले के मुख्य संदिग्ध के 2 वकीलों का कहना है कि वो अब उसका बचाव नहीं करेंगे। भारत प्रशासित कश्मीर के पंपोर में चरमपंथी और भारतीय सेना के बीच 60 घंटे चली मुठभेड़ समाप्त हो गई है। सीरिया के एलेपो में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में एक बाजार पर हुए हमले में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं। थाईलैंड के सम्राट भूमिबोल अदुलियादेज की खराब सेहत की रिपोर्टों के मद्देनजर थाईलैंड के प्रधानमंत्री प्रयुत चनोचा अपना कामकाज छोड़कर बैंकॉक लौट आए हैं। इस्लामिक स्टेट चरमपंथियों के उत्तरी इराक में विस्फोटकों से भरे ड्रोन से हमले में दो कुर्द लड़ाके मारे गए हैं। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी। रेहान फजल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।